Tossir. अब आप देखिए कि आयत नंबर 46, यहां से एक बहुत ही अहम मजमून बयान हुआ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो तसल्ली दी जा रही है, उन्हें एक दुआ सिखाई गई है कि वो लोग जो कि तौहीद और आखरत का इनकार कर रहे हैं, आप उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दीजिए और आप अपना मामला जो है वो अल्लाह के सपोर्ट करें। कुल कह दीजिए, अल्लाहुम्मा फातिर समावाती वल अर्दी आलिम गैबी व शहादती अंत तहकुम बैन इबादिक फी मा कानू फीही यख्तलिफून। ओहो खुदाया, आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, हाजिर और गायब के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान उस चीज का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। अब आप देखिए कि यहां पर जो है वो क्या कहा जा रहा है कि जब लोग हठधर्मी करें, जब लोग इनकार करें, तो क्या करना चाहिए? फिर ये दुआ पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये दुआ जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई गई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुआ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई है और हमें भी ये दुआ जो है वो पढ़नी चाहिए। सही मुस्लिम में अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हो रवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने सिदीका आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद को किस चीज से शुरू करते थे? रात की नमाज में, तहज्जुद में किस चीज से शुरू करते थे? तो उन्होंने फरमाया कि जब आप तहज्जुद की नमाज को उठते तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्रीला व मीकाईला व इसराफील। अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्रीला व मीकाईला व इसराफील फातिर السماواتِ والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم। बड़ी खूबसूरत दुआ है कि ए अल्लाह, जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील के रब अलैहिस्सलाम, आसमानों जमीन के पैदा करने वाले, आसमानों जमीन के बनाने वाले, हाजिर और गायब के जानने वाले, तू ही बंदों के दरमियान उस चीज का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। आप अपनी इजाजत के साथ जो हक है जिसमें ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं, जो हक है उसमें मेरी रहनुमाई कर दे और बेशक आप ही सिराते मुस्तकीम की तरफ जो है जिसे चाहें हदायत दे सकते हैं। तो इससे क्या बात पता चलती है कि ये दुआ जो है ये हमें भी अपना मामूल बनाना चाहिए, क्योंकि ये दुआ जो थी ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे और आप तहज्जुद की नमाज में पढ़ा करते थे। और क्यों आप ये पढ़ते थे? कि आप लोगों को तौहीद की दावत देते थे, आप लोगों को बताते थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आप लोगों को बताते थे कि कयामत आने वाली है। तो आप जो उन्हें दावत देते थे तो लोग क्या करते थे? लोग जो थे उसका इनकार करते थे। तो यहां पर जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ये लोग जो के तौहीद का नाम लेकर जो है वो इनके चेहरे जो है वो मुरझा जाते हैं, इश्म अज्जत हो जाते हैं, नफरत जाहिर होती है, इनके चेहरों का रंग बदल जाता है और इसी तरह कयामत का ये इनकार करते हैं। और यानी ये क्या करते हैं कि आपकी दावत के नतीजे में, उसके मुकाबले में जो है वो इख्तलाफ करते हैं। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दावा करने के साथ साथ जब ये तंग दिल हों, जब इनके चेहरों का रंग बदले, तो आप तेजी के साथ अपने रब की तरफ रुजू करें, उनके आगे दामन फैलाएं, खुशू खुजू के साथ अपने अल्लाह से कहें, ऐ आसमान और जमीन के पैदा करने वाले और गायब और हाजिर के जानने वाले, तू ही अपने मोमिन और काफिर बंदों के दरमियान इन बातों का फैसला करने वाला है जिनमें वो इख्तलाफ करते हैं, आप हक की तरफ मेरी रहनुमाई कर दीजिए। हजरत सईद बिन जुबैर रजी अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे कुरान करीम की एक ऐसी आयत मालूम है कि उसको पढ़कर आदमी जो दुआ करता है तो वो कबूल होती है। फिर हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने यही दुआ जो है वो पढ़ी, अल्लाहुम्मा फातिरस समावाती वल अर्द। तो इससे ये बात पता चलती है कि हमें भी अपने मामूलात जिंदगी में इस आयत को शामिल करना चाहिए। आप नोट कर लीजिए, ये आयत नंबर 46 है और जो मैंने आपको सही मुस्लिम की हदीस सुनाई है तो इसमें थोड़े से अल्फाज का और इजाफा है, उसमें शुरू में इजाफा है, यानी ये आयत नंबर 46 से पहले आप कहेंगी अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्रीला व मिकाइला व इसराफील, उसके बाद आप जो है वो यहां से शुरू कर लेंगी, क्योंकि ये अल्लाहुम्मा शुरू में आ गया ना, अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्रीला व मिकाइला व इसराफील, तो फिर आप फातिरस समावात से लेकर यख्तलिफून तक पढ़ेंगी और उसके बाद जो है फिर आप अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगी कि इहदिनी लिमख्तलिफा फीही मिनल हक्की बिइज़्निक इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिराति मुस्तकीम। तो आप देखेंगी जैसे कि सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो ये दुआ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है। फिर आयत नंबर 47 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है कि वलौ अन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू मा फिल अर्दी जमीअन व मिस्लहू माहू लफ्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाबि यौमल क़ियामा व बदा लहुम मिन अल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून। अब यहां पर जो है जो शिर्क करने वाले हैं उनको एक तंबीह की जा रही है, उन्हें डराया जा रहा है। क्या तंबीह है? और अगर वलौ और अगर अन्ना ये के लिल्लज़ीना ज़लमू, वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, क्या जुल्म किया उन्होंने? शिर्क किया। तो अगर वो लोग जिन्होंने शिर्क किया, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, और अगर हो इन लोगों के लिए ज़लमू शिर्क करने वालों के लिए मा फिल अर्दी जमीयन, जमीन की सारी दौलत भी हो, यानी जो कुछ भी जमीन में है वो सब का सब इनके लिए हो, वह मिसलाहू और इतना ही और, इतना ही और मिसलाहू माहू और इसी कदर इसके साथ और हो, लफ्त दो बही और वो बदले में दे दें इसको, फिदिये में दे दें इसको, मिन सूइल अज़ाबी यौमल क़यामती, क़यामत के दिन के बुरे अजाब से बचने के लिए उसे फिदिये में दे दें और वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब यहां पर जो है ये बात बताई जा रही है कि वो दिन इतना सख्त होगा, वो दिन इतना मुश्किल होगा, वो दिन इतना हौलनाक होगा कि कयामत के दिन की हौलनाकी से बचने के लिए ये जमीन भर दौलत और इतनी ही और उससे बचने के लिए ये देना चाहेंगे ताकि कयामत के बुरे अजाब से बच जाए। फबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून, फिर फरमाया और जाहिर होगा उनके लिए मिनल्लाही अल्लाह की तरफ से मालम यकूनू जो नहीं थे वो यहतसिबून ख्याल करते, यानी वहां अल्लाह की तरफ से इनके अमाल के नतीजे में वो सब कुछ आएगा जिसका उन्होंने कभी अंदाजा भी नहीं किया था। वबदा लहुम, इसका मतलब क्या है? जाहिर होना। वबदा लहुम से ये आतू और जाहिर हो जाएंगी इनके लिए बुराइयां इनकी, यानी इनकी जो बुरी कमाई थी, इनके जो बुरे अमल थे, मां का सब वो जो इन्होंने कमाई की वो सब उस दिन जाहिर होगी। वहा का बहम और वो आ घेरेगा इनको, यानी हर तरफ से इनका अहाता कर लेगा, घेराव कर लेगा। वह कानून भी यस्ताज़ून, वो चीज जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे। तो ये लोग किस चीज का मजाक उड़ाया करते थे जो हर तरफ से इन्हें आकर जो है वो घेर लेगी। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि इससे मुराद है कयामत के दिन का अजाब, के अहले मक्का और काफिर जो थे वो क्या करते थे, या आज के लोग भी क्या करते हैं कि वो कयामत के दिन को झुठलाते हैं, उस दिन के अजाब को झुठलाते हैं। तो इनके बुरे अमाल के नतीजे में कयामत आएगी, हिसाब किताब होगा, और उस वक्त जो है अजाब जिसको ये झुठलाते थे, मजाक उड़ाते थे, वो इनको घेर लेगा। तो उस वक्त मुशरिक आदमी जो है वो क्या करेगा, वो सब कुछ छोड़ देगा, और उस दिन के अजाब से बचने के लिए वो चाहेगा कि अगर दुनिया भर दौलत उनको मिलती और इतनी और, तो फिदिये में देकर वो अपने आप को इस अजाब से जो थे वो बचा लेते। तो यहाँ पे भी इसी का जिक्र हो रहा है, आयत नंबर 49, फाइजा मसल इंसान दुर्रुन दाना। अब यहाँ पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो बता रहे हैं कि इंसान जो है उसका हाल क्या है, कि जब इंसान को कोई जरा सी मुसीबत छू जाती है, दाना, तो हमें पुकारने लगता है। सुम्मा इजा खवलनाहु नेमतम मिन्ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर जब हम अता करें उसको, यानी हम अपनी तरफ से खादिम नौकर चाकर उसको दें, खवलनाहु हम दें उसको नेमतम मिन्ना अपनी तरफ से नेमत, पाला इन्नमा उती तो अला इल्म, तो कहता है कि ये तो मुझे इल्म की बिना पर दिया गया। यानी इंसान नेमते जब मिलती हैं तो क्या कहता है कि मैं इसी का अहल था, मैंने मेहनत की थी इसलिए मुझे फर्स्ट आना चाहिए था, मैंने मेहनत की थी मुझे पास होना चाहिए था, मुझे तो अब मैनेजर कंपनी ने बनाना ही था, मैं तो दिन रात मेहनत करती थी, दिन रात मेहनत करता था, मैंने रोड टेस्ट तो पास कर ही लेना था, मेरे बच्चे तो अच्छे बनने ही थे, उनको तो कामयाब होना ही था, आखिर मैंने दिन रात एक कर दिया था, मैं बड़ी अक्लमंद थी। ये पीछे भी आप पढ़ चुकी हैं कि कारून जो था उसको जब खजाना मिला तो उसने क्या कहा था, और तो दुनिया वाले जो थे वो क्या कहते थे। तो यहाँ भी ये जो कुफर करने वाले, शिर्क करने वाले जो है वो क्या कहते हैं कि ये मुझे मेरी काबिलियत की बिना पर मिला है, मैं इसी का अहल था, मैं इसी की अहल थी, इन्नमा उती तो हु अला इल्म। अब आप भी सोचें कहीं आप तो नहीं ऐसा कहती, क्योंकि कारून अपने आप को तिजारत का बड़ा माहिर समझता था और अपने आप को मालियात का स्पेशलिस्ट समझता था, और वो कहता था कि मेरी काबिलियत की वजह से मुझे ये दौलत मिली है, तो अल्लाह ने उसका सारा खजाना उसके समेत जमीन में धंसा दिया। उस वक्त उसकी कोई तदबीर, उसके नौकर चाकर, उसकी मालो दौलत, उसकी जहानत, उसके कुछ भी काम ना आई। आप सूरत अल कसस आयत 76 से 78 तक को भी आप सामने रख सकती हैं, वहां पे भी जो है उसने क्या कहा था, इन्नमा उती तो अला इल्मिन इंदी। अल्लाह अकबर, बल ही आप फितना तो वलाकिन अक्सर हम ला यालमून, नहीं बल्कि ये एक आजमाइश है मगर इसमें अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं हैं। अब आप देख लें कि ये जो किसी को अगर अल्लाह ताला मालो दौलत से नवाजते हैं तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि किसी के पास जो है वो मालो दौलत का होना ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, ये उसका कोई क्रेडिट नहीं है, ये उसका कोई क्रेडिट नहीं है कि वो अपने आप को बड़ा समझे। अब आप देखें कि यहाँ पे फतन का लफ्ज आया है ना, फितनतुन जिसका रूट फतन है, और इम्तहान के लिए कुरान में तीन लफ्ज आए हैं, एक इम्तहान का, और इम्तहान ऐसी आजमाइश को कहते हैं कि जिसमें सख्ती के बजाय नरमी होती है, और जो पिछली तालीम और तरबियत होती है उसको आजमाया जाता है, और दूसरा लफ्ज है बला यबलू बलान, इसमें जो ये आजमाइश होती है इसमें सख्ती और शिद्दत पाई जाती है, और इब्तला उलट पलट करना, और जैसे कपड़ा पुराना हो तो जाहिर है कि एक आजमाइश होती है ना कि उसको धोया जाता है, पहना जाता है तो पुराना होता है। तीसरा लफ्ज है फतन का, इस आजमाइश में सख्ती पाई जाती है, जिसके मानी है सोने चांदी को आग पे तपाना, गलाना, ताकि खोट मालूम की जाए। और ये लफ्ज जो है आजमाइश, दुख, रंज, इबरत, अजाब, बीमारी, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है वो मालो दौलत के बारे में कहा है कि ये जो है आजमाइश है। और अल्लाह ताला ने बताया है कि ये जो फतन है ना, ये एक ऐसी आजमाइश है, क्योंकि इसका ताल्लुक उन चीजों से होता है जिससे इंसान का एक दिली लगाव होता है, कल्बी ताल्लुक होता है, और उसको पता भी नहीं चलता कि मेरी आजमाइश हो रही है। अस्तग़फिरुल्लाह। और कुरान में अल्लाह ताला ने इन्नमल मालू वल औलादु फितना, माल और औलाद दोनों को फितना कहा है। ऐसी सख्त आजमाइश है माल और औलाद, पता भी नहीं चलता कि मेरी आजमाइश हो रही है। और बड़ा ही जो है वो सख्त ये मरहला है। तो यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है कि दौलत मिलती है और पैसे मिलते हैं, नौकर चाकर, जायदाद, कारोबार, उसमें इजाफा होता चला जाता है, एक बेटा फिर दूसरा फिर तीसरा, औलाद फलती फूलती है। और फिर क्या होता है कि माल और औलाद की कसरत की वजह से जब दुनिया की नेमतों में इंसान घिरता है, फिर वो अल्लाह को भूलने लगता है, फिर वो दुनिया का हो जाता है, दुनिया का बेटा बन जाता है, इब्नुल्लाह बन जाता है, फिर वो फराइज भूलता है, फिर वो उसको जकात भारी लगती है, फिर उसको हज मुश्किल लगता है, उसको जो है वो नमाजें भारी होने लगती हैं, फिर वो घर में चैन की बांसुरी बजाता है, और वो क्या करता है कि फिर वो अल्लाह और आखिरत को भूल जाता है। बल ही फितना तो वाला कि ना अक्सर हम ला यालमून, नहीं बल्कि ये एक आजमाइश है, मगर इनमें से अक्सर लोग जो है वो इस बात को जानते नहीं है। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि ये जो गलत फहमी है, इससे लोगों को निकलना चाहिए। कद कालहा, यही बात कही थी अल्लाजीना, उन लोगों ने, मिन कबलिहिम, जो इनसे पहले थे, फमा अगना अनहुम मा कानू यक्सिबून, मगर जो कुछ वो कमाते थे फिर वो उनके किसी भी काम ना आया। यानी जो कौमे आद थी, कौमे समूद थी, फिरौन था, कारून था, जो पहले लोग थे, उन्होंने ऐसी बातें की थी। वो कहते थे ये सब कुछ हमारी काबिलियत से हमें मिला है, और जब अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसा तो क्या हुआ, फमा अग्ना अनहुम मा कानू यक्सिबून, मगर वो जो कुछ कमाते थे फिर वो उनके किसी काम ना आया, क्योंकि वो अल्लाह के मकबूल बंदे ना थे, वो मोहसिनीन और मुत्तकीन में शामिल ना थे, फिर उनकी कमाई, उनकी मकबूलियत, उनकी कुर्सी, उनका इक्तदार, उनकी दौलत, उनके बच्चे, उनकी सलाहियत किसी काम ना आई। फअसाबहुम सय्यिआतु मा कसबू, फअसाबहुम, फिर जो है आ पहुंची इन पर, पड़ गई इनको सय्यिआतु, बुराइयां, मा कसबू, जो उन्होंने कमाई थी, यानी फिर अपनी कमाई के नतीजे में उन्होंने बुरे नतायज को भुगता। वल्लजीना जलमू, और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया है, मिन हाउलाई, इन लोगों में से, यानी वो लोग जो शिर्क करने वाले हैं, जो कि आपने सूरत के जुमर में 24वां पारे का आगाज ही जो है वो किस बात से हुआ था, आपने बिल्कुल इसके आगाज में यही बात तो पढ़ी थी। अल्लाह ताला ने सवालिया अंदाज में इस बात को रखा था, फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अल्लाह। अब यहां पे भी है कि वल्लज़ीना ज़लमू मिन हाउलाई, और इन लोगों में से जो भी जालिम है, सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू, वो उन करीब अपनी कमाई के बुरे नतायज भुगत करेंगे, वमा हुम बिमोजिज़ीन, ये हमें आजिज कर देने वाले नहीं हैं, यानी कुफर और शिर्क करने वाले अपने जो अमल है इसका रिजल्ट देख कर रहेंगे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इनकी देवियां और देवता इनके किसी काम आने वाले नहीं है कि फिर वो इनकी जो है वो कुछ मदद करते हैं। अब आयत नंबर 52 में अब आप देखिए कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है कि रिज्क की वुसत और तंगी का मयार जो है, यानी अल्लाह किसी को रिज्क ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, तो ये जो तकसीमे रिज्क है ये अल्लाह की हिकमत और मसलहत के ताबे है। किसी को रिज्क ज्यादा देना या कम देना, इसका ये नहीं मतलब कि जिसको कम देता है तो अल्लाह उसे नाराज है, जिसको ज्यादा देता है तो अल्लाह उससे जो है वो खुश है। कहा कि रिज्क की तंगी और वुसत, इसका मायार जो है वो मकबूलियत नहीं है, अल्लाह की नाराजगी नहीं है, बल्कि अल्लाह की हिकमत और मसलहत के ताबे है और उसी के हाथ में है। अवलम यालम अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाउ, और क्या इन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क खुला देता है, व यकदिर और वो तंग देता है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो के ईमान लाते हैं। ये आयत नंबर 53 ये उन खूबसूरत आयात में से है। ये आयत जो है जब नाजिल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया जरा आप भी अपने कानों को खोलें, अपने दिल जो है उसके दरवाजे खोलें। आप सोचें कि इस आयत के नाजिल होने पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे सारी दुनिया की हर चीज मिल जाती तो मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी इस आयत के नाजिल होने के बाद हासिल हुई है। किसे मुसनद अहमद ने रवायत किया है। और यही आयत जो कि आयत नंबर 53 है, इसके नाजिल होने पर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि ये आयत गुनाहगारों के लिए कुरान की सब आयतों से ज्यादा उम्मीद अफजा आयत है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि सबसे ज्यादा उम्मीद और रजा वाली आयत तो ये है, इन्ना रब्बका लजू मगफिरतिन लिन्नासी अला जुल्महिम। ये आयत नंबर 53 सूरत अज़ुमर, इसका शाने नज़ूल क्या है। बुखारी की रवायत है, सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कत्ले नाहक किए और बहुत किए, और जिना का इर्तकाब किया और बहुत किया, और उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि जिस दीन की तरफ आप दावत देते हैं वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन फिक्र ये है कि जब हम इतने बड़े बड़े गुनाहों का इर्तकाब कर चुके हैं, अब अगर मुसलमान हो भी गए तो क्या हमारी तौबा कबूल हो सकेगी। तो इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर दी। कुल ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए या इबादी अल्लज़ीन असरफू, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीआ इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ, यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। इन्नहू हुवल गफूरुर रहीम, वो तो बड़ा गफूरुर रहीम है। व अनीबू इला रब्बिकुम, और पलट आओ अपने रब की तरफ। व अस्लिमू लहू, और उसके मुती हो जाओ। व अस्लिमू लहू मिन कबली अन यातियकुमुल अज़ाबु थुम्मा ला तुनसरून, और अपने रब की तरफ पलट आओ और मुती हो जाओ इससे पहले कि तुम पर वो अजाब आ जाए और फिर कहीं से तुम्हें मदद न मिल सके। अब आप देखिए कि ये जो आयत है, मुफस्सरीन कहते हैं कि ये आयत गुनाहगारों के लिए कुरान की सब आयतों से ज्यादा उम्मीद अफजा है। और ये किसका कॉल है? ये अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हों का कॉल है, जिन्हें फकीहुल उम्मत कहा जाता है। इस आयत में अल्लाह ताला की मगफिरत की वुस्सत बयान की गई है। और आप देखें कि अल्लाह ताला ने गुनाहगार बंदों को कहा, ऐ मेरे बंदो, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसहिम, वो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादतियां की हैं। देखें अल्लाह कितना प्यार करने वाला है, अल्लाह की मोहब्बत जो है उसका एक उबलता हुआ जो है यहाँ पर फवारा है, चश्मा है, रहमत है, जो कि पलट पलट कर पुकार रही है कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है। असराफ के मानी है ज्यादती करना, यहाँ पे गुनाहों की कसरत और इसमें अफराद के लिए असराफ का लफ्ज आया है। और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो का मतलब है कि ईमान लाने से पहले या तौबा इस्तगफार का एहसास पैदा होने से पहले कितने ही गुनाह क्यों ना किए हो, वो जो छुप छुप कर किए थे, वो जो किसी को खबर नहीं है, वो जो आंखों के इशारों से किए थे, वो जो पलकों से किए थे, वो जो चेहरे के माथे के निशानों से, वो जो हाथों की उंगलियों से, वो जो चल के किए थे, वो जो बोल के किए थे, वो जो सुनकर किए थे, वो जो अलल ऐलान किए थे, तो तौबा इस्तगफार से पहले, उसका एहसास पैदा होने से पहले कितने ही गुनाह क्यों ना किए हो। और इंसान जो है वो बड़े बड़े गुनाह करके बहुत परेशान हो तो ये ना समझे कि मैं तो बहुत ज्यादा गुनाहगार हूं, मुझे अल्लाह आखिर कैसे माफ करेगा। अगर वो सच्चे दिल से ईमान कबूल कर ले, अगर वो तौबा तो नसूह कर ले, अगर उसके दिल में जो है वो नदामत का तूफान उठ जाए, अगर उसका दिल गिल्टी हो जाए, अगर उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, हाँ वो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा हो, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो अल्लाह की तरफ लौट आए, तो फिर अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। और इस सिलसिले में बुखारी की यह रवायत बड़ी खूबसूरत है। और मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, इससे क्या बात पता चलती है कि हमें जो है वो गिरतों को थामना है, हमें रोतों के आंसू पहुंचने हैं, हमें वो लोग जो के गुनाह कर करके जिन्होंने अपनी जिंदगी को गुनाहों से स्याह कर लिया है, बड़े परेशान हैं, मायूस हैं, सोचते हैं हमारी तौबा कैसे कबूल होगी, अल्लाह हमसे कैसे राजी होगा, आखिर अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा, वो वाला गुनाह, वो वाली बात, वो जो ऐसे हो गया था, वो जो ऐसे कर दिया था, वो जो ऐसे हो गया था। कभी किसी को ये ना कहें कि आप बहुत बुरी हैं, आप तो बड़ी गुनाहगार हैं, आप तो बड़ी खराब हैं, आप तो, आपने इतना बड़ा गुनाह किया, आप इतनी बुरी हैं। कभी किसी से नफरत ना करें, आप कौन होती हैं, मैं कौन होती हूँ, आप कौन होती हैं कि लोगों के लिए तौबा के दरवाजे बंद कर दें, लोगों को मायूस कर दें, लोगों को अल्लाह की रहमत से दूर कर दें, आप कौन होती हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादतियां की हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, वो तो गफूर और रहीम है। और अक्सर आप अपनी औलाद जो है उसके रवैये पे कहते हैं कि तू तो काफिर है, तू तो मुशरिक है, तू तो है ही बहुत बुरा, तुझे तो अल्लाह माफ ही नहीं करेगा। आप कभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को, नौकरों चाकरों को और पता नहीं किस किस के बारे में आप क्या क्या कह देते हैं ना। आप और मैं, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, हम नहीं किसी के बारे में ये कह सकते कि अल्लाह आपकी मगफिरत नहीं करेगा, या अल्लाह आपकी तौबा कबूल नहीं करेगा, या आप तो बहुत ही बुरे हैं। कौन जाने, हु नोज, कब कौन तौबा करे और वो नेकियों में सबसे आगे बढ़ जाए। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह नो की यह हदीस, जिसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक आदमी ने 99 कत्ल किए, फिर उसे तौबा की तौफीक हुई। उसने रूए जमीन में सबसे बड़े आलिम के बारे में पूछा। लोगों ने उसे एक राहिब के बारे में बताया। वो उसके पास गया और उसे बताया कि इसने पूरे 99 कत्ल किए हैं, क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा नहीं। देखिए कैसा आलिम था ना, कहा कि नहीं, इसने इस राहिब को भी कत्ल कर दिया। मायूस हो गया, अब पूरे 100 लोगों का कातिल हो गया। फिर इसने रूए जमीन पे लोगों से पूछा कि लोगों मुझे सबसे बड़े आलिम का बताओ। उसे एक आलिम के बारे में बताया गया। उसने उसे कहा, उसके पास गया और उसे कहा कि इसने तो 100 लोगों को कत्ल किया है, क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? उसने जवाब दिया कि हाँ, और ये कि उसके और तौबा के दरमियान कोई रकावट नहीं है। फलां बस इलाके में जाओ, इस इलाके को छोड़ दो और फलां इलाके में जाओ, वहां पे अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, उनके साथ अल्लाह की इबादत करो और अपने इलाके को वापस ना जाओ, ये बुरा इलाका है। होता क्या है कि जब आप कहीं जहां रह रहे होते हैं बुरी सोबत बुरे लोगों में, और वहां पे सबके साथ जब सबके सामने बुराई की भी होती है, तो लोग लान तान करते हैं। आप अच्छा भी बनना चाहते हैं तो लोग लान तान करके लोग कहते हैं अच्छा इसको किसी इसने देखा नहीं है, इसका पता नहीं है, सबको पता है ये फलां ऐसी ऐसी है, फलां ऐसा ऐसा है। तो वो शख्स जो तौबा करना चाहता है, वो नेकियों की तरफ आना चाहता है, बुरी सोबत को छोड़ना भी चाहता है, जो लान तान है ना वो उसको नेकी की तरफ नहीं आने देती। लोगों का मायूस करना, लोगों का बातें बनाना। और आप देखें कि आप अपनी सोसाइटी में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बच्चों में, या आप जरा इसका तजिया करें कि ऐसे बच्चे फिर वो किसी से मिलना नहीं चाहते, अलग थलग डिप्रेशन, और उसको उनको लगता है कि हमें सब अगली लुक देते हैं, हमें सब बुरा समझते हैं, और हमें ये सोसाइटी तो कबूल ही नहीं कर रही, बस ठीक है इनको छोड़कर अब ठीक है, वापसी के रास्ते तो है नहीं। फिर वो और गुनाहों के अंदर उसकी दलदल में फंसते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से प्यार करना चाहिए, उन्हें मोहब्बत देनी चाहिए, उन्हें शफकत देनी चाहिए, उनसे टाइज या रिश्ते तोड़ नहीं देने चाहिए, उनको घरों से निकाल नहीं देना चाहिए, उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए। उन्हें बाज वालदेन भी बच्चों की थोड़ी गलतियां होती हैं, लेकिन वो सबके सामने उनको बुरा भला कहते हैं, सबके सामने दोस्त हैं रिश्तेदार हैं मेहमान आए हैं बस उनके ऊपर चढ़ चढ़ पड़ेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, उनको डिग्रेड करेंगे, वो बच्चे बेइज्जती महसूस करते हैं और फिर वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, फिर वो और बुरे होते चले जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे भी देखें कि क्या है कि वो इतना अच्छा बुजुर्ग और आलिम था कि उसने कहा कि हाँ फलां इलाके को जाओ, वहां पे अल्लाह के नेक लोग रहते हैं, उनके साथ अल्लाह की इबादत करो और अपने इलाके को छोड़ दो और उसमें वापस ना जाना, ये बुरा इलाका है। जब वो आधे रास्ते को पहुंचा तो उसे मौत आ गई। अभी वो मंजिल पहुंचा नहीं था पर मौत आ गई। चुनाचे इसके बारे में रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते झगड़ने लगे। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसने तौबा करके अल्लाह से लौ लगाई थी और ये जो है वो अल्लाह की तरफ आ रहा था, अल्लाह अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए ये आ रहा था, तो हमने इसकी जो है वो रूह लेनी है। अजाब के फरिश्ते कहने लगे इसने कोई नेक अमल तो किया ही नहीं, बड़ा ही गुनाहगार है, बस तौबा ही की है ना, अमल तो कोई नहीं किया, बस चल पड़ा था, हमने रूह लेनी है। अब क्या हुआ कि जब इन फरिश्तों में झगड़ा होने लगा तो अल्लाह ने एक जज बनाकर फरिश्ता भेजा, एक और फरिश्ते को अल्लाह ने नाजिल किया जो सालिस था। वो तीसरा फरिश्ता जब इनके पास आया तो अजाब के फरिश्ते और रहमत के फरिश्ते उन्होंने उसको जज बना लिया, तस्लीम कर लिया। इसने कहा कि दोनों फासलों की पैमाइश करो, वो जिस जानिब करीब था उसी का हकदार है। जब उन्होंने पैमाइश की तो जिस जानिब वो जा रहा था वो फासला कम निकला, यानी गुनाहों की बस्ती जो थी, जो गुनाहों की बस्ती थी उससे वो ज्यादा कदम चला था, और अब जो उसकी नेकियों की तरफ जो वो जाना चाह रहा था वो मंजिल ज्यादा करीब थी। और फिर रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह जो है वो कबज कर ली और उसे बख्श दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत ये हदीस है। और इससे क्या बात पता चलती है कि जब भी इंसान तौबा करेगा तो अल्लाह इसके गुनाह माफ कर देगा। यहाँ पे मैं इस बात की भी वजाहत करना चाहती हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि लोग अल्लाह की रहमत और मगफिरत की उम्मीद पर गुनाह करते चले जाएं। लोग ये समझें क्योंकि अल्लाह बहुत माफ करने वाला है इसलिए खूब गुनाह करो, इसके अहकाम और फराइज की परवाह ना करो, अल्लाह की हुदूद को बेदर्दी से तोड़ो और फिर तौबा कर लेना, यानी गुनाह करो फिर तौबा कर लेंगे, यानी तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना ये मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को फिर अल्लाह माफ नहीं करता। ये तो फाजिर है जो कि दीदा दलेरी से नाफरमानी करता है। तो यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि अल्लाह जो है वो कौन है, इन्नहु हुवल गफूर रहीम, क्यों तो बड़ा गफूर रहीम है। वा अनीबू इला रब्बिकुम, और अपने रब की तरफ लौट आओ। अनीबू ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, नून वो बा इसका रूट है, शहद की मक्खी को भी नौब कहते हैं। मीलों दूर जाकर अपने छत्ते की तरफ आ जाती है। ना जहां में कहीं अमां मिली, जो अमां मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्मे खाना खराब को तेरे अफ़े बंदा नवाज में। जो मैं सर बसजदा हुआ कभी, तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि हमें जो है वो अल्लाह की तरफ लौटना चाहिए। और फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल मैं फिर दोहराऊंगी, कहते हैं मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूं तो इसका असर अपने गधे और अपने खादिम के इखलाक में देख लेता हूं। तो आइए अल्लाह की अतात करें। आज ही एक बहन जो है बहुत ही उदास थी, रो रही थी और बता रही थी कि उनके भाई की शादी हुई और जो उनकी भाभी हैं वो दीन से दूर हैं, और जैसे एक बेसिक जो इखलाक किरदार होता है उनके अंदर नहीं पाया जाता। तो कह रही थी कि भाई मेरे बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे हैं, और कहती मेरे भाई कहते हैं कि मेरे अमलों की जरूर कोई सजा है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे दुनिया में ये सजा ये दी है कि मुझे ऐसी बीवी दी है ना, जो ने शुक्री भी है और बच्चों की जो तालीम और तरबियत है उसका साथ नहीं देती और मुती नहीं है और अपने शौहर की फरमा बरदार नहीं है। तो इंसान जब गलतियां करता है तो बाज औकात अल्लाह ताला दुनिया में भी इंसान को पकड़ लेता है ना, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, लेकिन अपने हालात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो आयत नंबर 53 जो है ये उम्मीद दिलाती है और ये बताती है कि तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू करें। और याद रखें कि तौबा करने वालों के लिए माफी की उम्मीद है, लेकिन नाफरमानी करने वालों के लिए अल्लाह जो है अजीजुन जुन्तकाम है, फिर उनसे इंतकाम लेने वाला है। और जो तौबा करता है तो उसके गुनाह अगर समंदर की झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा, जैसे कि उसने 100 आदमियों के कातिल को जो है वो माफ कर दिया। तो करो क्या, वा अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ रुजू करो, अपने रब की तरफ लौटो। तो इससे इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह की तरफ बार बार रुजू करना चाहिए। नंबर 3, व अस्लिमू लहू मिन कबल अन यातियकुमुल अजाबू, और अल्लाह के फरमा बरदार बन जाओ और उसी के मुती हो जाओ कबल इसके कि तुम पर वो अजाब आ जाए। थुम्मा ला तुनसरून, और फिर तुम्हारी कोई मदद ना की जाए। थुम्मा ला तुनसरून, फिर कोई तुम्हारी मदद को ना आए। वत्तबेउ आहसना मा उन्जिला इलैकुम रब्बिकुम, और पैरवी इख्तियार कर लो अपने रब की भेजी हुई किताब के बेहतरीन पहलू की। मिन कबले यातिया कुमुल अजाबू बख्तातन, कबल इसके कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए। व अन तुम ला तशुरून, और फिर तुमको इसकी खबर भी ना हो। आप कारी सुदेश की तिलावत सुने, मैं अक्सर ये आयात सुनती हूँ, गाड़ी में लगती हैं। और इन आयात पे जो आयत 53 है इसमें वो जारो कितार होते हैं, आयत 53, 54, और उनकी हिचकी बन जाती है। तो आप देखें कि जब कुरान की समझ होती है, जब आयात की रूह समझ में आती है, तो वाकई जिगर और दिल फटने लगता है। फिर इंसान पानी पानी आंसू आंसू हो जाता है, फिर इंसान गिल्टी हो जाता है। तो अब यहां पे यानी जब रुजू करेंगे, जब मुती बनेंगे तो करेंगे क्या? वत्तबेउ, इत्तबा करना है, खुशी से अतात करनी है। आसानामा उन्जिला, आसानामा उन्जिला से मुराद कुरान है, और पूरा कुरान ही आसन है, यानी पूरा कुरान ही आसन है, अकमल है, और फिर क्या करना है कि इसका इत्तबा करना है। क्यों? इलैकुम मिन रब्बिकुम, यानी मा उन्जिला इलैकुम मिन रब्बिकुम, कि ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है। और क्यों इत्तबा करें? इससे पहले कि अचानक वो अजाब आ जाए, वह अंतुम ला तशुरून, के जिसके आने का तुम्हें पता भी ना चले, तुम्हें इल्म और शऊर भी ना हो। अजाब आने से पहले तौबा करना और अमले सवाले करना, इसकी दावत दी जा रही है। और यहाँ पे जो अजाब है ये दुनिया के अजाब का जिक्र है। और आयत नंबर जो 56 है ये बहुत ही हिला देने वाली आयत है। ये जो आयत है आयत नंबर 56, अंतकूला, और इंसान तू कहने लगे नफ्सुन, यानी जब वो अजाब आ जाए, जब अल्लाह पकड़ ले, अंतकूला, और उस वक्त जो है तू कहने लगे नफ्सुन, कोई भी नफ्स, यानी अल्लाह के अजाब को देखकर कोई इंसान या नफ्स कहने लगे या हसरता। अब आप देखें कि यहां पर या हसरता का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। या हसरता जो है ये अरबी जबान का एक अंदाज है, ये अरबी जबान का एक अंदाज है। और इसमें जो है वो जैसे हसरत जो है ये मस्दर है, और इसमें ये जो ता आया है ये कलाम की खूबसूरती के लिए है, ये जैसे एहसास की शिद्दत को जाहिर करने के लिए है कि या हसरता, हाय अफसोस, अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, अफसोस किस चीज पर, मा फर्रतु, जो मैंने कसूर किया, जो मैंने अफराद किया, फी जंबिल्लाह, अल्लाह के हक में। जम जो है अल्लाह की अतात, यानी कुरान और इस पर अमल करने में मैंने जो कोताही की थी इस पर मुझे अफसोस है, इस पर मुझे बड़ी ही हसरत है। आपको पता है ना कयामत का एक नाम यौमुल हसरत होगा, दूसरा नाम यौमुल तगाबुन, हार जीत का दिन। तो यहां पर भी कि उस दिन इंसान जो है वो कहे कि अफसोस मेरी उस गलती पर, अल्लाह माफ़ रतु, जो कुछ मैंने जो है वो ज्यादती की, फी जम्बिल्लाह, अल्लाह के हक में, यानी अल्लाह की अतात में, कुरान पर अमल करने में मैंने जो कोताही की, आज मुझे इस पे बड़ा अफसोस है। फइन कुंतु लमिनस साखिरीन, बल्कि मैं तो उल्टा मजाक उड़ाने वालों में शामिल हो गया। औ तकूला, या तू कहे, लौ अन्न अल्लाह हदानी लकुंतु मिनल मुत्तकीन, काश अल्लाह ने मुझे हदायत बख्शी होती तो मैं भी मुत्तकियों में से होता। औ तकूल हीन तरल अज़ाब, लौ अन्न ली करतन फअकूना मिनल मुहसिनीन, या अज़ाब देखकर तू कहे काश मुझे एक मौका और मिल जाए और मैं भी नेक काम करने वालों में, नेक अमल करने वालों में शामिल हो जाऊं। अब आप देखें कि यहां पर जो है कयामत के दिन जो है इंसान को जो अफसोस होगा, जो मलामत होगी, इंसान की तीन हालतें पेश की गई हैं। पहली हालत क्या है कि इंसान जो है कहेगा अफसोस कि मैंने अल्लाह की बंदगी में कमी क्यों की, मैंने फराइज क्यों ना अदा किए, मैंने जकात क्यों ना दी, मैंने हज क्यों ना किया, मैंने सिला रहमी क्यों ना की, मैंने जो है वो गुस्सा क्यों किया, मेरा इखलाक इतना खराब क्यों था, और मैं जो है मैं क्यों मजाक उड़ाता था, मैं क्यों मजाक उड़ाता था। तो पहली हालत क्या है कि पछताएगा, रोएगा, अफसोस करेगा। तो अपने अमलों पर जो है वो अफसोस करेगा। नंबर दो, वो कहेगा काश कि मैं भी परहेजगारों और मुत्तकियों में शामिल होता, काश मैं भी हदायत पाने वालों में शामिल होता। नंबर तीन, आयत 58, वो कहेगा कि काश के मुझे एक चांस मिल जाए, मेकअप टेस्ट, काश मुझे एक चांस मिल जाए, मुझे फिर मैं दुनिया में जाऊं और मैं नेक अमल करने वालों में शामिल हो जाऊं। तो आप देख लीजिए कि ये सारी आयात जो है ये क्या पैगाम देती हैं, वही जो आपने आयत नंबर 56 54 और 55 में पढ़ा, यानी तीन आयतों में हमारे सामने अमल के उसूल क्या आए। नंबर एक, तौबा अस्तगफार करना। नंबर दो, मायूस ना होना, डिप्रेशन का शिकार ना होना। नंबर तीन, आयत नंबर 54 जो है, वह अनीबू इला रब्बेकुम, यानी इखलास के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करना। नंबर चार, वह अस्लिमु लहू, जिस्म के अज़ा के साथ अल्लाह की बंदगी करना। और आयत नंबर जो 55 में है, ये अगला अमल का सूल है, और वो क्या है कि एक होता है अतात और एक होता है इत्तबा। अतात पहला दर्जा है, इत्तबा दूसरा है, और इसके मानी क्या है कि खुशी के साथ जो है वो नेकी के रास्ते पे चलना। और मा उन्ज़िला इलैकुम से मुराद कुरान है और फिर सुन्नत है, क्योंकि वही है मतलू और वही है गैर मतलू, सब इसमें शामिल है। और याद रखे कि जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाहों की वजह से रिज्क से महरूम कर दिया जाता है। तो क्या करना है, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। तौबा अस्तगफार पे भी लेक्चर है जो कि वेबसाइट पर है, और कैसेट सीडी वगैरह आप सुन सकती हैं, तफसील से है उसमें। तो यहाँ पर भी ये बात पता चलती है कि आखिरी बात यहाँ पर क्या पता चलती है, फअकूना मिनल मोहसिनीन, कि मैं एहसान के दर्जे की नेकी करने वालों में शामिल हो जाता। तो मुत्तकीन में काश के होता, और फिर साथ ही कहा कि वो मोहसिनीन के साथ में शामिल हो जाता। बला कज्जात का फिर फरमाया कि तहकीक आई थी तेरे पास, यानी अल्लाह की तरफ से जवाब दिया जाएगा कि आई थी तेरे पास आयाती, मेरी आयात, फकज्जबत बिहा, फिर तूने उन्हें झुटलाया था, वस्तकबरता, और तूने तकबर किया था, वकुंता मिनल काफिरीन, और तू तो काफिरों में से था, यानी मेरी आयात को कबूल करने की बजाय तूने उनको झुटलाया, तूने किब्र किया। और हदीस में किब्र की तारीफ आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, इसको आप याद कर लें, अल किब्रु बतरुल हकी व गमतुन नास, किब्र है हक का इनकार करना और लोगों को हकीर समझना, यानी अल्लाह की अतात से इनकार करना, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करना। और आपको पता है कि जिसके दिल में जर्रा बराबर किब्र पाया जाएगा तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। और तू काफिरों में से था, यौमल कयामती, और कयामत के दिन, तरल लजीना, तू देखेगा उन लोगों को, कजबू अल्लाही, जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधे हैं, वजूहुहुम मुस्वद्दा, कि उनके मुंह काले होंगे, अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, क्या जहन्नुम में मुतकब्बिरीन के लिए काफी जगह नहीं है। आप देखें कि आपने आयत नंबर 32 में ये बात पढ़ी थी ना, अलैसा फी जहन्नमा मस्वल्लिल काफिरीन, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मस्वल्लिल मुतकब्बिरीन, के मुतकब्बिरीन के लिए जहन्नुम में क्या काफी जगह नहीं है। वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीन तक़ौ बिमफाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सू वला हुम यहज़नून, और फिर उस दिन अल्लाह जो है वो निजात देगा, वयुनज्जी, और अल्लाह जो है वो बचा लेगा, निजात देगा। अल्लज़ीना, उन लोगों को, इत्तकऊ, जो डरते हैं, भी मफाज़ातिहिम, बसबब इनकी कामयाबी के, यानी वो लोग जो है जिन्होंने दुनिया की जिंदगी में तकवा इख्तियार किया, और इस तकवा की वजह से जो है वो अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया, तो अल्लाह उन्हें निजात दे देगा। वयुनज्जिल्लाहु, और अल्लाह निजात देगा। अल्लाह 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 अल्लज़ीना, उन लोगों को, इत्तकऊ, जो कि डरते रहे, जो गुनाहों को छोड़ते रहे, भी मफाज आते हैं, बस अब इनकी कामयाबी के, यानी इनका जो दुनिया की में इन्होंने तकवा की कोशिशें की तो उसकी वजह से अल्लाह उन्हें बचा लेगा। ला ये मसू मसू, नहीं छुएगी उनको बुराई, यानी उन्हें जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। अल्लाहु खालिकु कुल्ले शैइन व हुवा अला कुल्ले शैइन वकील, अल्लाह ही हर चीज का खालिक है और वही हर चीज का निगहबान है। अल्लाह ताला ने दुनिया को पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि वही हर चीज की निगरानी कर रहा है और वो हर चीज की निगेबानी कर रहा है। अल्लाह ही खालिक है और अल्लाह ही जो है वो वकील है। तो फिर क्या करना चाहिए? अल्लाह की मखलूक बनकर जीना चाहिए और अपनी जिंदगी के मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देने चाहिए। और आयत नंबर 63 जो है ये अल्लाह ताला के इख्तियारात को वाजे करती है। लहू मकालीदुस समावाती वल अर्द वल्लज़ीन कफरू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। उसी के लिए हैं चाबियां आसमानों की और जमीन की। और आपको पता है कि किसी के पास अगर किसी चीज की चाबियां हों तो ये बात पता चलती है कि उसके पास जो है वो इख्तियारात हैं। तो ये जो आयत है ये अल्लाह ताला के इख्तियारात को वाजे करती है। मकलीद, मिकलीद और मिकलात की जमा है। बाज ने इसका तर्जमा चाबियों का किया है और बाज ने खजानों का। तो और इसका जो है वो मानी यही है कि तमाम मामला जो है वो अल्लाह के इख्तियार में है, कि तमाम बातें जो हैं वो अल्लाह के इख्तियारात में हैं। क्योंकि किसी के पास चाबी होना जो है किसी चीज की इस बात को जाहिर करता है कि उसके पास ही जो है वो इख्तियारात हैं। तो यहां पर भी ये बात बताई जा रही है कि बहस का खुलासा है ये जो आयत है ना, आयत नंबर 62 और 63, ये सारी बात का खुलासा है। ये सबक का हमारे का खुलासा है कि अल्लाह ही खालिक है और उसके साथ अल्लाह ही वकील है और अल्लाह ही के पास जो है वो इख्तियारात हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जो अल्लाह की खालकियत का, अल्लाह अल्लाह की मुहाफ़ज़त का और अल्लाह के इख्तियारात का इनकार करेंगे तो उनका जो है वो अपना ही नुकसान होगा। वल्लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाही, और जिन्होंने कुफ्र किया अल्लाह की आयात से, उलाइका हुमुल खासिरून, तो ऐसे ही लोग जो है वो खसारे में जाने वाले हैं। खसारे में जाने का मतलब क्या है? कि कुफ्र के नतीजे में वो जहन्नुम में चले जाएंगे। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है वो नेक और मुत्तकी बंदों में शामिल कर ले, हमें कुरान पर अमल करने वाला बनाए, हमें जो है वो दुनिया की जिंदगी में तौबा अस्तगफार की तौफीक दे और तौबा अस्तगफार की हिफाजत करने वाला भी। और अल्लाह ताला हमें इस हाल में दुनिया से रुखसत करे कि हमें कलमा नसीब हो और जो है हम ईमान के आला दर्जे पर हों और अल्लाह ताला जो है वो हमसे राजी हो। या अल्लाह तू हमें मुत्तकीन और मोहसिनीन में शामिल कर ले। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हमें अनाबत दे दे, हमें जो है वो अतात दे दे और हमें अपने बेहतरीन कलाम पर अमल करने वाला बना और हमें इस दर्जे की नेकी करने की तौफीक दे कि अंताबुदुल्लाह का अन्ना का तराहू फइल्लम तकुन तराहू फइन्नहु यराक। और हमें ये हदीस जो है इसको भी समझने वाला बना दे कि अलकिब्रु बतरुल हक्की वगमतुन्नास, और शैतान था जो मुतकब्बिर था और हमें अल्लाह के अतात गुजार बंदे और बंदिया बनना है। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।